उनका तذکرہ हो रहा है, उनमें से एक अमल है हया और पाक दामनी। अन अबी हुरैरा رضی اللہ تعالی عنہ, अबू हुरैरा رضی اللہ تعالی عنہ रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हया मिन अल ईमान, के हया ईमान में से है, वल ईमान फिल जन्ना, और ईमान जन्नत में जाने का सबब है। कंजुल अमाल की रिवायत है। और एक दूसरी हदीस में है कि जिस मर्द को कोई औरत अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करे और वो जवाब दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, इन्नहु काना फ़ाहिशतम वसा सबीला, ये फोहश बात है और बुरा काम है। मोमिन की जिंदगी का मकसद आखिरत की तैयारी, काफिर की जिंदगी का मकसद लुत्फ और अय्याशी। दीन इस्लाम ने हया को पसंद किया। एक रवायत में है, अल हया व शोबत मिन अल ईमान, हया ईमान का शोबा है। एक जगह फरमाया, इजाफात कल हया एमल माशीता, जब तुझसे हया खत्म हो जाए फिर जो चाहे तू करता फिर। इसलिए मोमिन के अंदर हया भी हो और ईमानी गैरत भी हो। फरमाया, ला ईमान लिमन ला गैरत लहू, जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान ही नहीं। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अन अगयर वल्दे आदम वल्लाहु अगयर मिन्नी, मैं औलाद आदम में सबसे ज्यादा गयूर हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे भी ज्यादा गयूर है। सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में वो हया देखी जो मदीना की कमारी लड़कियों की आंखों में भी मुझे नजर ना आई। इसलिए दीन इस्लाम ने हया की तालीम दी। औरत को कहा, वकरना फी बुयूत कुन्ना, कि तुम अपने घरों में रहो। एक उसूल बता दिया कि औरत घर के अंदर की मामलात को संभाले, अगर कोई शरई तकाजा हो तब घर से बाहर आए, और बाहर आने के लिए भी महरम साथ हो और खुद पर्दे में हो। ये भी कहा कि अगर कोई मर्द आपसे कोई चीज मांगे या आपको किसी से कोई चीज लेनी हो, फस अलूहुन्न में वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से आप मांगे। ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, तुम्हारे दिलों के लिए और इन मर्दों के दिलों के लिए भी यही बेहतर है। और फिर ये भी फरमाया कि قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ مفسرین نے لکھا कि जो आंखों की हिफाजत करेगा ये इब्तदा है, वो अपनी इज्जत और नामूस की भी हिफाजत कर सकेगा, और जिसकी आंखें बेबाक हो जाएंगी उसकी इज्जत का पर्दा भी चाक हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने आंख का पर्दा छोटा बनाया ताकि गैर महरम सामने आए तो जल्दी बंद हो सके। दीन इस्लाम ने औरत को कहा कि तुम गैर मर्द से अपने आप को छुपा लो। उसकी मिसाल ऐसे है कि जिस आदमी के पास जेब में $10,000 हो वो जेब कुतरों से होशियार रहता है, जिस घर के अंदर $50,000 हो जरूरत के तहत वो चोर उचक्कों से बहुत मोहतात रहते हैं कि कोई आदमी हमारे माल पर हाथ न साफ कर ले। इसी तरह औरत के पास इज्जत और नामूस एक कीमती चीज है। शरीयत ने कहा कि तुम गैर महरम मर्दों से अपने आप को छुपाओ। एक आदमी पर्दे के बड़ा खिलाफ था और कहता था कि मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। अब एक दिन गोश्त लेके आ रहा था बाजार से और चाहता था कि अपने घर जल्दी पहुंचाए ताकि बीवी उस गोश्त को पकाए, तो उसने उस गोश्त को थैले के अंदर छुपाया हुआ था। एक बंदे ने कहा कि इसको तुम प्लेट में डालो और प्लेट अपने सर पे रख कर इसको लेके जाओ। कहने लगा, क्यों? अगर मैंने ऐसा किया तो कव्वे और परिंदे मेरे इस गोश्त को उचक के ले जाएंगे। उसने कहा, 1 किलो के गोश्त की इतनी फिक्र है और ये जो तुम्हारा 70 किलो का गोश्त है, तुम्हारी बीवी ये बेपर्दा बाहर फिरेगी तो इसको कव्वे नहीं उचक के ले जाएंगे। तो तब उसको बात समझ में आई कि दुनिया का दस्तूर है कि कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। औरतें अपने दिलों में झांक के देखें, इनका एक होता है ज्वेलरी बॉक्स जिसमें ये अपने जेवरात रखती हैं। कभी इन्होंने उसको ड्राइंग रूम में ला के रखा कि जी इसको छुपा के रखने की क्या जरूरत है? इनको अच्छी तरह पता होता है काम करने वाले मर्द औरतें जिसकी भी नजर ज्वेलरी पे पड़ेगी सब उसको चोरी करेंगे। तो अगर सोना चांदी माल हम दूसरों से छुपा के रखते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उसको चोरी ना किया जा सके, तो औरत को भी शरीयत ने कहा कि तुम अपने आप को गैर मर्द से छुपा के रखो ताकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी इज्जत पर हमला ना किया जा सके। शरीयत ने कहा कि औरतें अपने बालों को भी ऐसी जगह न डालें जहां पर गैर महरम उसे देख सके। औरत ऐसे बर्तन में न खाए जिसमें गैर महरम मर्द ने खाया हो। औरत को अगर गैर महरम मर्द से बात करने की जरूरत पेश आ जाए तो फरमाया, फला तखदौना बिलकौल, तुम उनके साथ जरा सख्त लहजे में बात करो ताकि जिसने 3 बातें करनी है वो 3 की जगह 2 करे और जिसने 2 करनी है वो 2 की जगह 1 करे। काम की बात करेगा और अगर तुम अपनी आवाज में नरमी पैदा करोगी तो फिर फयतमा अल्लजी फी कल्बिही मरज़ुन, उस बंदे के दिल के अंदर मर्ज पैदा होगी। वो चाहेगा कि तुम्हें देखे और फिर देखने के बाद चाहेगा कि तुम्हें अपने पास रखे, तुम्हारी इज्जत के ऊपर हमला करे। इसलिए शरीयत ने कहा कि औरतें बेपर्दा घरों से बाहर ना निकलें। अगर रास्ते में चलना हो तो दरमियान में ना चलें, साइड पे चलें, चलने का अंदाज मुनासिब हो, फैलने वाली खुशबू ना लगाएं। बाद औरतें ऐसे कपड़े पहन के निकलती हैं कि कपड़ों के बावजूद उनके जिस्म के एक एक उज्व का सही पता चलता है। फरमाया, रुब्बा कासियतुन आरियातुन यौमल कियामा, क्यामत के दिन ये यूं कपड़े पहन के निकलने वाली औरतें ये नंगी ही समझी जाएंगी। इसलिए क्यामत के दिन बेपर्दा औरत को फरिश्ते बेलिबास नंगा करके जहन्नम में डालेंगे। ये सिर्फ उसके इस गुनाह की वजह से उसको सजा मिलेगी। हदीस पाक में है कि बेपर्दा औरत जब तक घर ना लौट कर आए अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं, घर के अंदर रहे तो रिश्तेदार जो गैर महरम हैं उनसे भी अपने आप को छुपाए। हत्ता के अगर महरम रिश्तेदार हों मगर फासिक फाजिर हों तो शरीयत ने कहा तुम उनसे भी बच के रहो, ऐसे कामों से बचो जो तुम्हें बेपर्दा होने पर मजबूर करें। मौसीकी को शरीयत ने इसलिए मना किया कि हदीस पाक में आता है कि मौसीकी इंसान के अंदर जिना की ख्वाहिश को इस तरह पैदा करती है जिस तरह बारिश के बरसने से जमीन के अंदर सब्जे की पैदावार होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना थे, वो घर में तशरीफ लाए नबी अलैहिस्सलाम के, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अजवाज मुतहरात से फरमाया कि तुम इससे पर्दा करो। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी, वो तो नाबीना है। फरमाया वो तो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो ना। शादीशुदा औरत को कहा कि तुम अपने खाविंद की तन्हाई की बातें दूसरों को मत बताओ। शरीयत ने हुक्म दिया कि जब भी लड़की के जोड़ का खाविंद मिल जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। तो अब इन तमाम बातों से यह बात समझ में आती है कि दीन इस्लाम ने हया को पसंद किया और औरत को कहा कि तुम अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत रखो। अब इस चीज की गहराई में जरा जाएं कि आखिर शरीयत ने यह पाबंदी क्यों लगाई। उसकी वजह यह है कि शरीयत ने हमेशा कमजोर का ख्याल रखा, औरत की हमेशा शरीयत ने फेवर की, इसको प्रोटेक्शन दी, औरत को फेवर दी, ताकि इसकी मजबूरी, इसकी कमजोरी से फायदा उठाकर कोई इसको खिलौना ना बना सके। शरीयत ने मर्द को कहा कि तुम किसी औरत को करीब करना चाहते हो तो तुम उसे बीवी की हैसियत से करीब कर सकते हो। बीवी की हैसियत से तुम्हें मजमे के अंदर निकाह करना पड़ेगा, हक मेहर देना पड़ेगा। अपने घर में रखोगे तो उसको नान नफका देना पड़ेगा, उसकी जरूरियात पूरी करनी पड़ेंगी। अगर उसकी औलाद हुई तो औलाद की भी परवरिश करनी पड़ेगी, और जब तुम मरोगे तो तुम्हारी मीरास में उस औरत का हिस्सा होगा। अब देखिए शरीयत ने उस औरत को कितनी प्रोटेक्शन दी ताकि औरत जिंदगी में कभी भी बेसहारा ना बने। इसलिए शरीयत ने औरत को पूरी जिंदगी कमाने का हुक्म नहीं दिया। ये बेटी है तो बाप के जरिए इसके नान नफका, बहन है तो भाई के जरिए, बीवी है तो खामिद के जिम्मे, मां है तो औलाद के जिम्मे। इसलिए कि अगर शरीयत औरत को कहती कि तुम कमाओ और खाओ तो इस बेचारी को तो फिर लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती, जी मुझे जॉब दे दीजिए, अपने बॉस को खुश रखना पड़ता। और साफ जाहिर है कि लोग इसकी मजबूरी से फायदा उठाते। तो दीन इस्लाम का ये हुस्न है कि उसने औरत को मजबूर नहीं होने दिया। मर्द को कहा कि तुम औरत को करीब करना चाहते हो तो इसकी जिम्मेदारी उठाओ। चुनांचे जिस माहौल में निकाह का कानून नहीं, वहां पर अगर आप देखें तो औरत इस कदर मजलूमा है कि वाकयात सुन सुनकर हैरानी होती है। कुफर के मुआशरे में अज़दवाजी जिंदगी का तसव्वुर ही खत्म होता जा रहा है, इसलिए कि वहां डाइवोर्स रेट ही 90% से ज्यादा। तो अब वहां के मर्दों ने औरतों से लिव टुगेदर वाला काम शुरू कर दिया। एक महीना इसके साथ रह रहे हैं, फिर अपना ब्रीफ केस उठाया दूसरे के साथ, फिर तीसरी के साथ। मुझे एक मर्तबा यूरोप के एक कॉलेज में बयान करने का मौका मिला तो मुझसे किसी ने सवाल किया जी कि इस्लाम चार शादियों की इजाजत क्यों देता है। मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन किया कि आप ये बताओ कि आपके माहौल में एक नौजवान शादी करने से पहले कितनी लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है। भरी क्लास के सामने उस लड़के ने हंसकर कहा कि नॉट लेस देन 100। अब आप सोचिए कि जिस माहौल में शादी करने से पहले 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ वो जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है और फिर अगर शादी करता भी है तो डाइवोर्स रेट मोर देन 90% है, तो वहां तो औरत खिलौना बन गई। چنانچہ جتنی مجبور اور بے سہارا عورت اس ماحول میں ہے ترس آتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ سناتا ہوں تاکہ بات پکی ہو۔ ایک انجینئر صاحب تھے، پروجیکٹ کے لیے اپنے ملک سے آئے تو دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے ایک انجینئر نے اس سے مذاق کیا کہ تمہیں تو ایک مہینہ ہو گیا، بتاؤ پیچھے بیوی کا کیا حال ہے؟ تو اس نے مسکرا کے اسے جواب دیا کہ ویمنز آر لائک بسز، اف یو مس ون ٹیک اندر ون، کہ عورتوں کی مثال بسوں کی مانند ہے، ایک مس ہو جائے تو تم پھر دوسری لے لیا کرو۔ اب جہاں مرد کی سائیکی یہ ہو کہ عورت کی یہ ویلیو ہے، آپ سوچیں وہاں عورت کس قدر مظلومہ اور بے سہارا ہوگی۔ ایک انگریز انجینئر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اس کی عمر 52 سال تھی۔ کام کے دوران وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اتنے۔ پھر پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں، میں نے شادی بھی نہیں کی۔ اب وہ مینیجیریل رینک کا بندہ، لکھا پڑھا سمجھدار ریسپونسبل آدمی تھا، حیران ہو کے میں نے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اف یو کین فائنڈ ملک ان دی مارکیٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے کاؤ ان یور ہاؤس، کہ اگر آپ کو مارکیٹ میں دودھ آسانی سے مل سکتا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ جس ماحول میں بیوی کا تصور یہ ہو، عورت کا تصور مرد کے اندر یہ ہو، تو آپ سوچیں کہ وہاں عورت کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اس کفر کے ماحول میں 30 سال کی عمر تک تو عورت کے بڑے چاہنے والے، مگر یہ چاہنے والے صرف اس کی جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ چند دن ایک استعمال کرتا ہے، پھر جی بھر گیا تو دوسری کی طرف، یہ بیچاری کسی دوسرے کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اس لیے کفر کے ماحول میں ہر نوجوان لڑکی شام کو بن سنور کے ڈانسنگ ہال میں جاتی ہے اور وہاں ڈانس کرتی ہے، اور اس کے دوران کوئی مرد اس کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک نے چھوڑ دیا تو دوسرے کو ڈھونڈا، تیسرے کو ڈھونڈا۔ پھر جب عورت کی عمر ڈھلنے کی ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیں سالوں کفر کے ماحول میں رہنا پڑا، اس نتیجے پر پہنچے کہ 35 سال کے بعد وہاں عورت کو یوزڈ پیپر کی طرح ٹریش کین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ چونکہ مردوں کو نوجوان لڑکیاں میسر ہوتی ہیں، اس لیے اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں بنتا۔ اب اس عورت کو بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، نوکری بھی کرنی ہوتی ہے، اور خود گھر کی گروسری خرید کے اکیلا رہنا بھی پڑتا ہے۔ اتنی پریشان ہوتی ہے وہ عورت کہ دو بچے ہیں، نوکری پہ جائے تو ان کو کہاں چھوڑے، اب جہاں چھوڑے ان کو وہاں پے کرو، پھر نوکری کر کے تھکی ہوئی آتی ہے تو گھر کی صفائی بھی کرو اور گھر کے کھانے بھی خود پکاؤ اور اس کے لیے گروسری بھی خود خرید کے لاؤ، بیمار ہے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اکیلا پن اور کام اتنے کہ عورت اس چکی میں پس جاتی ہے۔ ذرا بڑے ہوتے ہیں بچے تو بچے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عورت کو 40 سال سے اوپر اپنی زندگی اکیلے گزارنی پڑتی ہے۔ اب آپ سوچیں، گھر ہو اور عورت اکیلی ہو تو اس کو تو گھر کھانے کو دوڑے گا، کوئی اپنا نہیں، نہ خوشی شیئر کر سکتی ہے نہ غم شیئر کر سکتی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تو اس عورت کے لیے نہ کوئی پروٹیکشن ہوتی ہے نہ اس کے لیے سہارا ہوتا ہے۔ چنانچہ کفر کے ماحول میں اولڈ ایج ہاؤسز بنا دیے جاتے ہیں، ایسی بے سہارا عورتیں وہاں جاتی ہیں، وہاں سارے بوڑھے اور یہ باقی زندگی وہاں گزارتی ہے۔ امریکہ میں ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے ایک انگریز عورت نے آ کر پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ کہا جی۔ کہنے لگی آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ پوچھا کیا وعدہ؟ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں رہتی ہوں اور اکیلی ہوتی ہوں، میرے 3 بچے ہیں لیکن سب جوان ہو گئے اور وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، خاوند نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، اب اکیلا رہ رہ کے میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، آپ میرے اوپر یہ احسان کریں، وعدہ کریں، اب جہاں کہیں بھی ہوں آپ مجھے 1 منٹ کے لیے ٹیلی فون کر کے صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ پوچھا کہ آخر کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے سارے دن انتظار رہے گی کہ کسی کا فون آئے گا اور وہ مجھ سے اتنا پوچھے گا کہ ہاؤ آر یو، آپ کیسی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عورت اتنے سے لفظ سننے کے لیے ترس رہی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کو کہنے والا کوئی نہیں، فیملی سسٹم وہاں ہے نہیں۔ اب اس عورت کا اندازہ لگائیں کہ جو پورا پورا سال اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ ایک عورت نے بیٹے پہ مقدمہ کیا کہ میرا شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، یہ جوان بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، اس نے کتا پالا ہوا ہے، یہ کتے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لے کے جاتا ہے سیر کے لیے، 3 گھنٹے یہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ 5 منٹ کے لیے میرے پاس نہیں آتا۔ عدالت میرے بچے کو کہے کہ روزانہ 5 منٹ مجھے چہرہ دکھا دیا کرے، آخر میں ماں ہوں۔ عدالت نے مقامی قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ بچے کی عمر چونکہ 16 سال سے زیادہ ہو گئی، لہذا ماں اس کے لیے ذمہ داری نہیں، اگر ماں کو پریشانی ہے تو وہ اولڈ ایج ہاؤس میں چلی جائے۔ رہ گئی بات کتے کی، تو چونکہ اس بچے نے کتے کو پالا لہذا 3 گھنٹے لگیں یا 5 گھنٹے لگیں، اس کو کتے کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اب جس ماحول میں کتے کی خدمت تو بچے کی ذمہ داری بنتی ہے اور ماں کی خدمت بچے کی ذمہ داری نہیں بنتی، گویا دوسرے لفظوں میں اس ماحول میں ماں کی حیثیت کتیا کسی بھی نہیں ہے۔ یہ اصل وجہ ہے کہ دین اسلام نے حیا کو کیوں پسند کیا۔ فرمایا کہ تم عورت کو قریب کرنا چاہتے ہو تو ذمہ داری اٹھاؤ، اسے اون کرو۔ چنانچہ ہمارے ماحول میں جب شادی ہوتی ہے تو خاوند اپنی بیوی کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے خرچے خود اٹھاتا ہے، اور اولاد کو شریعت نے کہا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ ہمارے ماحول میں عورت جتنی بوڑھی ہوتی ہے گھر میں اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ شریعت نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب سوچئے کہ ایک دین اسلام ہے جس نے عورت کو بڑھاپے کے اندر بھی ایسی عزت دی کہ کہا بچوں کو کہ اس کی خدمت کرو گے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہیں جنت ملے گی۔ ماں کی دعا، جنت کی ہوا۔ ایک ماحول تو عورت کو یہ عزتیں بخش رہا ہے، ایک ماحول تو یہ کہہ رہا ہے خامد کو کہ تم اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں دیکھ کر مسکرائیں گے۔ سوچئے عورت کو کیا عزت مل رہی ہے، کیا شان مل رہی ہے، کیا مقام مل رہا ہے۔ شکل کی بنیاد پر عورت کی عزت وہ تو 30-35 سال تک کوئی کرے گا، 30-35 سال کے بعد عورت کی جسمانیت وہ نہیں رہتی جو کمارے پن میں ہوتی ہے۔ تو اب کیا اس عورت کا کوئی غمخوار نہیں ہونا چاہیے؟ اس عورت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہونا چاہیے؟ وہ عورت کیا بے سہارا بن گئی؟ क्या जीते जागते वो कब्र में चली जाए, आखिर वो क्या करे, कहां जाए। तो ये दो जिंदगी गुजारने के निजाम हैं, एक कुफर का निजाम जो बेहयाई को पसंद करता है, एक दीन इस्लाम का निजाम जो हया को पसंद करता है। तो दीन इस्लाम ने अज़दवाजी जिंदगी फैमिली लाइफ का ऐसा तसव्वुर दिया कि औरत 100 साल की उम्र को पहुंच जाए तो भी इसको आंखों पे बच्चे उठाएं, ये नानी बने दादी बने तब भी इसकी दुआएं लें, इसके बच्चे इसको घर में बरकत समझें। तो अब सोचिए इस माहौल में औरत को क्या इज्जतें मिली, और कुफर का माहौल जहां 30 साल के बाद अब उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो शरीयत पे कुर्बान जाएं कि उसने औरत की कमजोरी को देखते हुए क्या तरीके जिंदगी समझाया कि जिसमें औरत को इज्जतें मिलती हैं, प्रोटेक्शन मिलता है, खुशियां मिलती हैं। लिहाजा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। अब दीन इस्लाम का जो तरीका जिंदगी है इसको खुशी से अपनाना चाहिए, इसमें औरत का अपना फायदा है। चुनाचे दीन ने कहा कि औरत कंवारी है या शादीशुदा, ये अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत करे। अगर ये जिना से बचेगी तो अल्लाह की मुकर्रब बंदी, और अगर बेहयाई के काम में पड़ेगी तो सजा की मुस्तहिक होगी। अब यहां एक उसूल की बात और भी सोचें, शरीयत ने कुरान मजीद में चोरी का तज़करा किया तो फरमाया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा, चोर मर्द और चोर औरत, इनको चोरी की सजा तुम ऐसे दो। और जहां जिना का तज़करा आया शरीयत ने कहा अज़ानियतु वज़ानी, जिना करवाने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, यहां औरत का तज़करा पहले किया। वजह क्या थी कि मर्द की मर्दानगी से यह बईद है कि वो चोरी करे, वहां उसका तज़करा पहले, और औरत की हया से यह बईद है कि वो जिना की मुर्तकिब हो। इसलिए जिना के मामले में मेन किरदार औरत का होता है। चुनाचे औरत अगर मजबूत हो और वो किसी गैर मर्द को अपने करीब ना आने दे तो कोशिश के बावजूद भी गैर मर्द उसके करीब नहीं आ सकता। जिना होता ही तब है जब औरत खुद अंदर से कमजोर होती है और ढीली पड़ जाती है। तो शरीयत ने कहा कि मर्द को भी हया करना चाहिए लेकिन औरत से हया और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी फितरत में औरत ने शर्म और हया रख दी। तो इसलिए शरीयत ने कहा कि जिना कबीरा गुना है। फरमाया कि गैर मर्द को देखना आंखों का जिना, उससे बातें करना कानों का जिना, हाथ लगाना हाथ का जिना, और अपनी सेक्सुअल जरूरत को पूरा करना ये मुकम्मल जिना। तो शरीयत ने इन तमाम चीजों से मना कर दिया, और इसी में हमारा फायदा और इसी में हमारी निजात है कि हम शरीयत के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अब जब कुफर ने यह देखा कि मुसलमानों के अंदर तो फैमिली लाइफ बड़ी मजबूत है, और 100 साल की भी औरत हो जाए तो उसको घर में इज्जत मिलती है, VIP बन के रहती है, उसने कहा कि औरत को घर से निकालो। चुनाचे घर से निकालने की लॉजिक क्या बनाई कि जी औरत को मर्द के कंधों से कंधे मिला के काम करने चाहिए। तो औरत को उन्होंने जॉब दी तो कौन सी, कहीं पर जहाज में खाने पेश कर रही है, खादमा वाला काम ही है ना, कहीं दफ्तरों में सेक्रेटरी बन के बैठी है, तो काम भी मिले तो उसको मामूली। डिसीजन मेकिंग जितनी बड़ी जॉब्स होती हैं, मैनेजेरियल जॉब्स होती हैं, सब मर्दों के पास। तो घर से भी बाहर निकाला और उसको वो मकाम भी ना दिया। नतीजा क्या निकला कि औरत जब बेसहारा हो गई तो मर्दों के हाथ में खिलौना बन गई। शरीयत ने कहा कि नहीं, औरत बेजान नहीं, इसके एहसासात हैं, ये जानदार है, इसको इज्जत मिलनी चाहिए। शरीयत ने कहा कि यहां मुसलमान माहौल में कमारी है तो मां बाप के घर पे रहे, और अगर शादी हो गई तो अब खाविंद इसकी जिम्मेदारी को कबूल करे। सुभान अल्लाह, क्या इज्जत वाली जिंदगी है। चुनाचे दीन इस्लाम ने ऐसे तमाम कामों से मना किया जिसमें कि कोई मर्द किसी औरत की इज्जत पे हमला कर सके। पर्दे का हुक्म दिया, दूर रहने का हुक्म दिया, बात करते हुए सख्त लहजे में बात करने का हुक्म दिया। तो तमाम वो अहकाम दे दिए जिससे कि कोई दिल में रोग रखने वाला मर्द अपने बुरे इरादों को पूरा न कर सके। अब नौजवान मुसलमान बच्चियों को भी चाहिए कि शरीयत की इन बातों पर अमल करें। कुफर ने मुसलमान बच्चियों के अंदर बेहयाई पैदा करने के लिए बड़ी कोशिशें की, चुनाचे उसने टेक्नोलॉजी को यूज किया। एक वक्त था जब सिर्फ रेडियो हुआ करता था, लोग समझते थे कि जी रेडियो के ऊपर जो गाने होते हैं ये बेहयाई फैलाते हैं। फिर उसके बाद टेप आ गई। टेप का ये मुसीबत कि जो गाना किसी को पसंद वो 100 दफा सुने, 200 दफा सुने। लोगों ने कहा जी बहुत बुरी चीज आ गई, टेप आ गई। फिर टेप के बाद टेलीविजन आ गया कि गैर महरम औरत की तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने लगी। तो लोगों ने कहा जी ये बहुत बुरी चीज है टीवी। फिर टीवी के साथ ऐसी चीज आ गई कि जिसमें वीसीआर में फिल्मों की कैसेटें घरों में हो गई कि जब चाहे जो चाहे तुम फिल्म देखो। लोगों ने कहा जी कि वीसीआर तो बहुत बुरी चीज है। तो कुफर ने उसके बाद फिर कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट का तस्वर दे दिया। अब इंटरनेट जब आया तो फिर कहा गया जी अब तो बेहयाई की हद हो गई। नौजवान बच्ची घर में बैठ के गैर मर्दों के साथ मैसेजेस करती है, ईमेल आती हैं। तो कुफर ने इंटरनेट के ऊपर वीडियो का सिलसिला भी शुरू कर दिया कि ताकि औरत की तस्वीर मर्द देखे और मर्द की तस्वीर औरत देखे। तो लोगों ने कहा जी अब तो बेहयाई की इंतहा हो गई। फिर जब काम आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला की शान कि तारीख इंसानियत में इतनी नुकसानदेह चीज शैतान के हाथ में कभी नहीं आई जितनी अब उसके हाथ में आ गई, और उसका नाम है सेल फोन। इसीलिए ये आज सेल फोन को हेल फोन कहता है कि ये अक्सर नौजवानों को जहन्नम में ले जाने का सबब होगा। ऐसी मुसीबत है, होता भी छोटा सा है, छुपाना भी आसान। और अब तो अगर बच्ची को मां बाप सेल फोन नहीं लेके देते तो जिन्होंने उनसे ताल्लुक कायम करना होता है वो सेल फोन भी देते हैं, सिम भी दे देते हैं, और उसमें चार्जिंग के पैसे भी वो खुद भरते हैं। अब देखें कुफर ने बेहयाई के लिए आसानियां कितनी कर दी। लड़की को खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने पास उसको छुपा के रखना है। उसके अंदर जो बैलेंस है वो भी कोई और भर रहा है और ये घंटों बातें कर रही है। तो ये सेल फोन इस कदर खतरनाक चीज है कि बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियों के जहन्नम में जाने का सबब है। और हालत ये, लोग नमाजों में खड़े होते हैं और उनके जेब में सेल फोन की घंटी बज रही होती है। हम लोग तवाफ कर रहे थे, एक नौजवान सेल फोन पर कमेंट्री कर रहा था। अब मैं हिजरत के करीब से गुजर रहा हूं, अब मैं खाना काबा के दरवाजे के सामने हूं, इतने बंदे हैं, इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, गर्मी ज्यादा है। तो मैं हैरान हो रहा था कि तवाफ इबादत है, अल्लाह के घर के सामने अल्लाह की तरफ तवज्जो करने की बजाय ये शख्स इस वक्त भी सेल फोन पे किसी गैर से बात कर रहा है। तो इस सेल फोन ने नौजवान नस्ल को तबाह करने की इंतहा कर दी। इतना मुझे इसके साथ दिल में गुस्सा है कि अगर मैं कहूं ना कि मुझे सेल फोन के साथ बुग्ज है तो शायद ये भी कोई नरम लफ्ज है। हदीस पढ़ा करते थे, मन अहब्बा लिल्ला व अबगज़ा लिल्ला, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए दुश्मनी की। अब अल्लाह के लिए मोहब्बत तो समझ में आती थी, کہ دیکھوں سے، اللہ والوں سے، مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرنی، لیکن بغض کرنا یہ اتنا کھلتا نہیں تھا ذہن کہ کس سے کریں، کافروں سے کریں، ان کو دعوت کیسے دیں پھر دین کی. اب سمجھ میں بات آئی کہ یہ سیل فون ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے لیے اس کے ساتھ دشمنی ہے اور بغض ہے. جی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان علماء کو چاہیے کہ نوجوان بچیوں کے پاس فون ہاتھ میں رکھنا اس کو منع ہی کر دیا جائے. دیکھیں شراب کو شریعت نے حرام کہا اور لاجک کیا دی، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے تھوڑے اس کا نقصان زیادہ. علماء نے ٹی وی کو حرام کہا، لاجک کیا دی، اس کے فائدے تھوڑے اس کے نقصان زیادہ. تو سمجھ میں بات تو یہی آتی ہے کہ سیل فون پر بھی یہی علت حکم کی لاگو ہوتی ہے، اس کے فائدے تھوڑے اس کا نقصان زیادہ. وہ نوجوان بچی جو پاک دامنی کی زندگی گزارتی تھی، اب رات کی تنہائی میں ایک غیر نوجوان لڑکا اس کے ساتھ سیکشول باتیں کر رہا ہے تو وہ تو اس کے جسم کی آگ کو بھڑکا دے گا نا، نوجوان بچی کے جسم میں آگ لگ جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہ کرنے کو جی چاہے گا. اور ماں باپ کو عورتیں بچیاں پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. چنانچہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں آئیں کہ 3 سال سے لڑکی نے اپنے پاس سیل فون رکھا ہوا تھا، لڑکے سے دوستی تھی اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا. لڑکیاں اپنی پڑھائی کے بہانے اپنے کمرے الگ لے لیتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے آج کے دور میں ماں باپ کے لیے کہ نوجوان کنواری بچی اور بچوں کو الگ الگ کمرے میں ٹھہرا دیا جائے. وہ کنڈی لگا لیتی ہے اور پھر یا تو انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہے یا پھر سیل فون کے ساتھ 5-5 گھنٹے غیر مرد سے باتیں کرتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اتنی لمبی باتیں نہیں کرتی جتنی باتیں کنواری لڑکی ایک کنوارے مرد کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چند دنوں میں اس کے دل کی حالت برباد ہو جاتی ہے. وہ لڑکی ہو کر چاہتی ہے کہ اسے گناہ کا موقع ملے، تو مرد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلے دوستیاں لگاتے ہیں اور جب وہ لڑکی کہتی ہے جی شادی کریں، کہتے ہیں میری امی نہیں مانتی، میرے ابو نہیں مانتے، دعا کرو میں بھی نفلیں پڑھ رہا ہوں، میں بھی دعا کروا رہا ہوں. یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، اصل میں اس کا نفس نہیں چاہتا. اصول کی بات یاد رکھیں کہ مرد کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جس لڑکی نے کنوارے پن میں میرے ساتھ دوستی کر لی، جب یہ میری بیوی بنے گی تو یہ غیر مردوں کے ساتھ بھی تو دوستی کر سکے گی، عادت تو ہے نا اسے، تو وہ بیوی کے طور پر اسے قبول نہیں کرنا چاہتا. اور اگر کہیں شادی کر بھی لے مجبور ہو کر، ساری عمر اس لڑکی پہ شک کرتا ہے. اس بیوی کا کیا حال ہوگا کہ ساری عمر خاوند جس کے بارے میں شک میں ہی رہے کہ یہ میری غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد سے بات تو نہیں کرتی، کیا عزت ہوگی اس بچی کی. اس لیے ٹیلی فون پہ غیر محرم مردوں سے باتیں کرنا ہر حال میں اس میں لڑکی کے لیے نقصان ہے، اس سے بچنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ نوجوان بچیوں کے یا بچوں کے جو کمرے ہوں اس میں کنڈی ہی نہ لگائیں، اور ان کو کہیں کہ ہم جب مناسب سمجھیں گے ہم بغیر اطلاع کے آپ کے کمرے میں آ سکیں گے. بچی کے کمرے میں ماں کو ہر وقت جانے کی اجازت ہونی چاہیے، لڑکے کے کمرے میں باپ کو ہر وقت جانے کی اجازت ہونی چاہیے. پھر دیکھیں یہ کیسے سیدھے ہو کے رہتے ہیں. ان کو ماں باپ کو واچ کرنا چاہیے اور سیل فون ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، او جی بچی سکول جاتی ہے تو آنا جانا لانا ہوتا ہے تو وہ بتا سکے کہ میں کہاں پہ ہوں. وہ ماں باپ کو تو کم بتائے گی، وہ کسی دوسرے کو زیادہ بتائے گی کہ میں کہاں پہ ہوں، آؤ اور مجھے جہاں چاہے وہاں لے جاؤ. इतनी बुराई बढ़ गई है इस सेल फोन की वजह से कि अल अमान और वल हफीज, जैसे घर में छुरी पड़ी होती है तो उसको हाथ में पकड़ते हुए बंदे के दिल में एहसास होता है कि ये नुकसान देने वाली चीज है, एहतियात से पकड़ो कहीं जिस्म को नुकसान ना पहुंचे। सेल फोन इससे भी ज्यादा बुरा, उसको हाथ लगाते हुए डरा करें कि ये मुझे जहन्नम में गिराने के लिए एक शैतान का असलहा है, शैतान का आला है, और इसको मैंने हाथ में पकड़ा तो मेरी जहन्नम की टिकट कट गई, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। जितना बच सकें, खास तौर पर कंवारी बच्चियां, घर में भी अगर बाहर से कॉल आए तो कई घरों में कंवारी बच्ची को कहते हैं फोन अटेंड करो, गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी उम्र की औरतें जवाब दें अगर जरूरत पड़े, मर्द मौजूद है तो मर्द जवाब दे, कंवारी बच्ची को तो फोन उठाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनवांटेड किस्म की कॉल आती हैं। और नौजवान जब देखते हैं कि दूसरी साइड पे कोई जवान लड़की बोल रही है तो उससे दोस्ती लगाने की कोशिश करते हैं, तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। शरीयत ने इसीलिए पहले तो हुक्म दिया कि तुम अपने आप को गुनाह से बचाओ, और फिर कहा कि अगर गुनाह करोगे तो सजा भी बहुत बड़ी। अल्लाह अकबर। चुनाचे जिना की सजा दुनिया में भी और जिना की सजा आखरत में भी। दुनिया में कैसे? कि दुनिया में जो औरत जिना करेगी उसका किसास है। किसास का क्या मतलब? कि उसकी औलाद में से उसकी कोई ना कोई बेटी जरूर जिना की मुर्तकिब होगी। जो मर्द जिना करेगा उसकी औलाद में से कोई ना कोई जिना का मुर्तकिब होगा। चुनाचे हदीस मुबारक में है कि जो शख्स जिना करेगा उसके घर के किसी न किसी फर्द से जिना किया जाएगा, अगरचे घर की दीवारों के साथ क्यों ना हो। तो आज अगर कोई मर्द जिना का मुर्तकिब होता है तो उसे सोचना चाहिए कि अब इसके बदले या मेरी बीवी जिना करेगी, या बहन करेगी, या बेटी करेगी, मेरे अपने घर में यही अमल होगा। यह तयशुदा बात है और इस पर हमने अपनी किताब में कितने वाकयात लिखे हैं। तो यह तो हुई दुनिया की जिल्लत। क्या कोई मां चाहती है कि उसकी बेटी इसकी मुर्तकिब हो? सोचे ना, जिस छोटी बच्ची को आप इतनी मोहब्बत से पाल रही हैं, आप नेक देखना चाहती हैं, दीनदार देखना चाहती हैं, अब ये बच्ची अगर कल को अपनी इज्जत के सौदे करेगी तो आपको कितना दुख मिलेगा। इसको आप बचा सकती हैं अगर आप खुद पाक दामनी की जिंदगी गुजारें। तो दुनिया की सजा तो ये हुई, और दूसरी सजा ये कि गो जिना मर्द करता है औरत के साथ, मगर हमेशा बेइज्जती औरत की होती है। मर्द का हिस्सा बराबर का होता है, लेकिन लड़के को इतना बुरा नहीं कहा जाता जितना लड़की को बुरा कहा जाता। अब अगर बात खुल जाए तो मां बाप किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होते, तो नौजवान बच्ची की इस गलती की वजह से पूरे घर की इज्जत बर्बाद हो जाती है, और फिर उस लड़की को अपनाने वाला कोई नहीं होता कि ये बदकिरदार लड़की है। औरत की हर गलती माफ हो सकती है, औरत के करैक्टर अगर खराब हो तो मर्द उसकी इस गलती को कभी माफ नहीं करता। तो जिल्लत की जिंदगी फिर क्या गुजारनी। तो ये तो दुनिया के नुकसान हुए, और आखरत के नुकसान क्या? अल्लाह अकबर। हदीस मुबारक में है कि बेपर्दा औरत, यानी वो औरत जो गैर महरम मर्द के लिए तैयार होती होगी, अपने फ्रेंड को मिलना है, मेकअप कर रही है, नहा धो रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, खुशबुएं लगा रही है, जो औरत दुनिया में गैर महरम मर्द के लिए तैयार होती होगी, जब क्यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पहुंचेगी, हदीस पाक में है, अल्लाह ताला इसकी तरफ से निगाहें फेर लेंगे, इसको कभी भी मोहब्बत की नजर से नहीं देखेंगे। और दूसरा नुकसान कि जहन्नम में तो सब डाले जाएंगे जो बुरे काम करने वाले हैं, लेकिन जिना करने वाली औरत इसको जब फरिश्ते जहन्नम में लेके जाएंगे तो लिबास उतार कर नंगा करके जहन्नम में डालेंगे। अब सोचो ये कितनी बड़ी सजाएं हैं। और एक हदीस पाक में आता है कि जिना करने वाली औरतें जहन्नम में जब जाएंगी तो उनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबूदार हवा निकलेगी कि जहन्नमियों के लिए जहन्नम में रहना मुश्किल होगा, लिहाजा जहन्नमी लोग इस औरत के ऊपर लानत करेंगे। और एक और बात, इस जहन्नमी औरत को एक गार में डाला जाएगा, जानी औरत को, और उस गार के दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, और उस गार के अंदर बिच्छू होंगे, वो बिच्छू इस औरत के जिस्म पर इस तरह बैठेंगे जैसे शहद के छत्ते पर शहद की मक्खियां बैठती हैं, और इतने बिच्छू एक वक्त में इस औरत को डसेंगे, और इसके जिस्म के अंदर इतनी तकलीफ होगी। क्यों? कि इस औरत ने ऐसा गुनाह किया कि इसके जिस्म के एक एक टिश्यू ने उसका मजा पाया था, आज इसके एक एक टिश्यू को जहर की सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो कांटा भी चुभ जाए तो औरत चीख मारती है। जहां हजारों लाखों बिच्छू इसके ऊपर मुसल्लत होंगे तो सोचें वहां इस औरत का क्या हाल होगा। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इसलिए शरीयत ने कहा कि जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करती है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यामत के दिन मुजाहिदा का दर्जा अता फरमाएंगे, अर्श का साया अता फरमाएंगे। चुनाचे मर्द चाहे शहीद का दर्जा पाना तो उसे जिहाद के जरिए शहादत पानी पड़ेगी, और औरत अगर अपनी इज्जत की हिफाजत कर जाए तो शरीयत ने कहा कि इस औरत को क्यामत के दिन शुहदा का मर्तबा अता किया जाएगा। चुनाचे जरा तवज्जो कीजिए, मर्द का जिहाद घर से बाहर होता है काफिर के साथ, औरत का जिहाद घर में रहकर होता है गैर महरम मर्द के साथ। जरा नौजवान बच्चियां तवज्जो करें, नबी अलैहिस्सलाम ने मर्दों से जिहाद करने पर बैत ली, और औरतों से नबी अलैहिस्सलाम ने इज्जत और इफ्फत की हिफाजत पर बैत ली। दूसरा पॉइंट, मर्द का जिहाद घर से बाहर निकलकर होता है, औरत का जिहाद घर में रहकर होता है अपनी इज्जत की हिफाजत। मर्द का जिहाद काफिर दुश्मन के साथ होता है, औरत का जिहाद गैर महरम रिश्तेदार के साथ होता है। अब दुश्मन मुजाहिद के ऊपर गोलियां बरसाता है, गैर महरम मर्द औरत पर मस्त निगाहों के तीर चलाता है, मुस्कुराहटों के तीर चलाता है। दुश्मन मुजाहिद के मुल्क पे कब्जा करना चाहता है, गैर महरम औरत के जिस्म पर इख्तियार हासिल करना चाहता है। दुश्मन मुजाहिद के मुल्क की वसाइल से फायदा लेना चाहता है, गैर महरम औरत के जिस्म से लुत्फंदोज होना चाहता है। मुजाहिद दुश्मन को अपने मुल्क की सरहद से दूर रखता है, औरत गैर महरम मर्द को अपने आप से दूर रखती है। मुजाहिद दुश्मन को मुल्क के अंदर एक इंच घुसने की इजाजत नहीं देता, औरत गैर महरम मर्द को अपने जिस्म के साथ उंगली लगाने की भी इजाजत नहीं देती। मुजाहिद दुश्मन पर कभी एतमाद नहीं करता, औरत गैर महरम मर्द पर कभी एतमाद नहीं करती। मुजाहिद मोर्चे में रहकर अपना दिफा करता है, औरत घर की चार दीवारी में रहकर अपना दिफा करती है। मुजाहिद समझता है कि दुश्मन ने मुझे देख लिया तो मेरी जान का खतरा, औरत समझती है कि गैर महरम मर्द ने मुझे देख लिया तो मेरी इज्जत आबरू का खतरा। दुश्मन मुजाहिद के मुल्क को लूट लेता है, गैर महरम औरत की आबरू को लूट लेता है। मुजाहिद ने दुश्मन को दूर रखकर गाजी का दर्जा पाया, औरत ने गैर महरम मर्द को दूर रखकर मुजाहिदा का लकब पाया। मुजाहिद दुश्मन से छुप के काम करता है, औरत गैर महरम मर्द से छुप कर काम करती है। مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم مرد کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے، مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی، عورت کو غیر محرم مرد کے معاملے میں استقامت دکھانے پر کامیابی، دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے ساتھ بات چیت کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے، دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم مرد عورت کی طرف میسیجز بھیجتا ہے، دشمن مجاہد کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر کامیاب، غیر محرم مرد عورت کی طرف گفٹ بھیج کر اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے دینداری کے راستے میں، مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرہ دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم مرد سے محتاط رہنے پر اجر ملتا ہے، مجاہد اپنے دشمن کو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم مرد کو اپنے حسن و جمال کا پتہ نہیں چلنے دیتی، اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتا ہے، عورت کو اپنا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پر مجبور کرتا ہے، مجاہد کو جہاد اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم مرد سے خطرہ ہو تو اپنے محرم مردوں سے مدد ملتی ہے، مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے، مجاہد کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے، عورت کو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے، مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، مجاہد کو اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، عورت کو رشتہ دار غیر محرم سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، مجاہد ملک کی حفاظت کرتے مرا تو شہید ہوگا، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے مری تو شہید ہوگی، مجاہد کو چاہیے کہ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے اللہ سے دعا مانگے۔ تو یہ 30 پوائنٹ ہیں کہ جس طرح مرد کو جہاد پر اللہ نے اجر دیا، عورت گھر رہتے ہوئے اگر اپنی عزت کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن مجاہدہ کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لمحوں نے خطائیں کیں صدیوں نے سزا پائی، چند لمحوں کی خطا کی خاطر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ وہ چٹان بن جائیں۔ دیکھیں جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں، پتا ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے، یہ پانی کے ساتھ بہتی ہیں، جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہیں، وہ تو پانی کا رخ موڑتی ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ چٹان بن جائے، کوئی ان کو گناہ کی طرف مائل کرنا بھی چاہے تو وہ اس کے رخ کو موڑ دیں۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ان کو روگ پالنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، چند لمحوں کی غلطی کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملانے سے اللہ محفوظ فرمائے، اور دھوکہ دینے والوں کو دوست سمجھنا اللہ اس غلطی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس کا ایک آسان طریقہ کہ عورت ذکر اذکار کرے، عبادات کرے، اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی طرف لگائے۔ کل سے یہ پیغام آ رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں چاہتی ہیں کہ توبہ تائب ہوں، رمضان مبارک کے ان اوقات میں اپنے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا عہد اور ارادہ کریں تاکہ جنت میں اپنے اللہ سے گھر بنوا سکیں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ جو بچیاں اس وقت توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، یہ توبہ کے کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ اللہ، इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए, सुभान रब्बी अल वहाब, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى आल सैयदना मुहम्मद वबारक वसल्लम। ए मालिक, हम आपके आज मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। रब करीम, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मगफिरत न करवाई, और नबी अलैहिस्सलाम ने इस बद्दुआ पर आमीन कह दी। ए मेरे मौला, हम नहीं जानते हमारी मगफिरत हुई या नहीं हुई, हमें बदबख्त बनने से बचा लेना, शकी बनने से बचा लेना। मेरे मौला, हमें जहन्नम से महफूज फरमा देना, अपनी पसंदीदा जगह जन्नत अता फरमा देना। ए अल्लाह, रमजान का थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया, रब्बे करीम हम इसका इकराम न कर सके जैसे करना चाहिए था। ए अल्लाह, हमारी इस कोताही को माफ कर दीजिए, हमें इससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाइए। ए मौला, आज सच्ची तौबा करना चाहते हैं। ए अल्लाह, हमने जो भी बेहयाई के काम किए, मेरे मौला हम माफी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए मेरे मौला, जब आपके आमद के दिन निगाहें हटाएंगे तो बंदे के दिल पे क्या गुजरेगी। ए अल्लाह, जिस औरत को आप बेपर्दा करके जहन्नम में फिकवाएंगे उसकी कितनी जिल्लत होगी। ए अल्लाह, मेहरबानी फरमा दीजिए, रहमत का मामला फरमाइए। मेरे मौला, जो भी गुनाह हमने किए माफ फरमा दीजिए, आइंदा परहेजगारी की जिंदगी अता फरमाइए, नेकी पाकदामनी की जिंदगी अता फरमाइए। ए अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जो जवान कुंवारी बच्चियां घरों में हैं, उनको नेक दीनदार और कदरदान लोगों का रिश्ता नसीब फरमा। अल्लाह बेकदरों से महफूज फरमा, अल्लाह बेकदरों से महफूज फरमा। मेरे मौला, बेकदरों से महफूज फरमा। जो शादीशुदा औरतें हैं, अल्लाह उनको घरों में इज्जतें नसीब फरमा, खामदों के दिलों में मोहब्बतें नसीब फरमा। मेरे मौला, उनके खामदों को नेकोकारी की जिंदगी नसीब फरमा, उनके खामदों को गैर लड़कियों के साथ उलझने से महफूज फरमा। मेरे मौला, हरिज के हलाल अता फरमा, सिद्ध के मकाल अता फरमा। ए अल्लाह, जो पेबरता जिंदगी गुजार रही हैं, उन बच्चियों के लिए पर्दा के साथ जिंदगी गुजारना आसान फरमा, जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।